खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावन के हुजूर झुके। तमाम आए हुए बहन भाइयों को ग्रेस बाइबल चर्च आरावाला में खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे मामूल के मुताबिक खुदावन के हुजूर झुकेंगे और अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे। हर तरह की सुस्ती, हर तरह की फिक्र, हर तरह की लाचारी को, हर तरह के सोचों ख्यालों को खुदावन के हुजूर अपने आप को खाली कर देंगे और कहेंगे कि तू हमारा बोझ उठा और अपने रूहुल कुद्दस से भर। अगर किसी तरह का सोच या दिल में कोई वहम, कोई भी गुनाह या फिक्र है, उसे खुदावन के हुजूर उसका इकरार करें। पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदल है। आए हम खुदावन के हुजूर झुके। कादर मुतलक खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तर्स के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज का दिन फिर हमें बख्श दिया। इस खुदावन खुदा दम तोड़ती हुई दुनिया में के इस जमीन पर तेरी नुमाइंदगी करें, जमीन पर तेरे लिए जिंदगी बसर करें। और खुदावन खुदा जो मंसूबा, जो मर्जी, जो मकसद तूने हम में से हर एक को दिया है जो तेरी आज आवाज को सुन रहा है और जो सुनेगा, खुदावंद दिलों सोचों ख्यालों को खुदावन खुदा अपनी तरफ लगा और रूहुल कुद्दस की मामूरी में आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब की तरबियत और नसीहत का बायस हो और खुदावंद अपनी जिंदगी में तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। सुनने वाले सब बहन भाइयों, बुजुर्ग बच्चों पर तेरे मसा के लिए, तेरी कुदरत, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में आमेन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दो बाप उसकी 22वीं आयत, उसमें से जो हमारा मजमून है वो है रूहुल कुद्दस के बारे में तालीम। और इफिसियों के खत के जो हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है, तीन हिस्सों में जो हम इफिसियों के खत में से सीख रहे हैं, और हमारा जो पहला हिस्सा है ये पहले बाप से तीसरे बाप की 21वीं आयत तक पाया जाता है जिसे कहते हैं सेट। और इसे दूसरे लफ्जों में इस्तेमाल किया जाता है कि हर एक ईमानदार की यीशु मसीह में हालत, मकाम, पहचान, उनकी शनाख्त। और बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा, उसने हर एक ईमानदार को जो उस पर ईमान लाया है उसमें शामिल करके खुदा के दाहिने हाथ बिठाया है। ये है सेट, यानी के यीशु मसीह में हमारी हालत, हमारा मुकाम। और दूसरा बाप उसकी 22वीं आयत में से जो हमारा मजमून हमने लिया है, जिस पर हम मुसलसल तौर पर सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि खुदा पाक रूह की रहनुमाई में इस पर हम बहुत गहरे तौर पर सीख सकते हैं, कई महीनों तक इस पर सीख सकते हैं। रूहुल कुद्दस के बारे में इतनी गहरी तालीम कलाम खुदा में पाई जाती है जो कि बहुत ही जरूरी है कि ईमानदार उससे वाकिफ हो। सो 22वीं आयत को देखें मेरे साथ, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। यहां पर हम पौलुस रसूल से जो सीख रहे हैं, यहां पर हमने पिछले बाब में बड़े ही गहरे तौर पर आयत बा आयत, लफ्ज बा लफ्ज खुदावन के कलाम में से रूहुल कुद्दस की मामूरी में कलाम खुदा की स्टडी की है जो हमारे लिए बहुत ही भलाई का बायस बनी है और जो बहुत ही जरूरी है। और हमारा जो मजमून है रूहुल कुद्दस की मामूरी में, रूहुल कुद्दस के बारे में तालीम हासिल करते हुए, जिस पर हम पिछले दिनों में से सीख रहे हैं, दो किस्म की नहमते या जिसे कह लें कि दो किस्म की खिदमात जो कलाम खुदा में से हमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर नजर आती हैं, اور میں نے آپ کو سکھایا کہ ہر ایک ایماندار کو یسوع میں ایمان لاتے وقت روح القدس کی معموری میں روح القدس سے کوئی نہ کوئی روحانی نعمت خدمت ملتی ہے، اور یہ خدمت دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کی نعمتیں یا خدمات ہیں جو کلام خدا کے آئینے میں نظر آتی ہیں، جس میں پہلی وہ خدمات ہیں جو عارضی ہیں۔ عارضی سے مراد غیر زبانیں بولنا، شفا دینے کی قدرت، معجزات کرنے کی قدرت، زبانوں کا ترجمہ کرنا، معجزات دکھانا، نبوت کرنا اور روحوں کو جانچنا۔ یہ تقریباً 7 قسم کی وہ عارضی خدمات ہیں جو ابتدائی دور میں رسولوں کو دی گئی، اور یہ تب تک کام میں لائی گئی جب تک کلام خدا وجود میں نہ آیا۔ اور دوسری وہ خدمات ہیں جو مستقل ہیں، جس میں پادری صاحب کی خدمت ہے جو کہ بہت ہی عمدہ اور بڑی خدمت ہے اس موجودہ کلیسیا کے دور میں، دوسری ہے مبشر کی خدمت، اور پھر اس کے بعد تیسری استاد کی خدمت، اس کے بعد نصیحت کی خدمت، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھی یہ 9 قسم کی خدمات ہیں جس میں ناصد کی یعنی کہ نصیحت کی خدمت ہے، منتظم کی خدمت ہے کہ چرچ میں انتظامیہ کے طور پر، بندوبست کے طور پر، مددگار کی خدمت ہے یعنی کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی خدمات میں مشغول ہونا، اور پھر اس کے بعد کلام خدا کے گہرے بیتوں کے متعلق یعنی کہ حکمت کا کلام، اور اس کے بعد پھر دانش مندی جسے کہہ سکتے ہیں ہم، کاؤنسلنگ یعنی کہ دوسرے لوگوں کو روح القدس کی معموری میں کلام خدا کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرنا۔ لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت سے 8 آیت میں، جو ہم نے پچھلے دنوں میں حوالہ پڑھا، وہاں پر جو سماجی خدمات ہیں اور جس میں بہت سی خدمات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ میں نے پہلے آپ کو سکھایا کہ ڈائیکونیا، جو یونانی کا لفظ ہے، اس کے سپیلنگ ہے DIAKONIA۔ ڈائیکونیا لفظ اپنے آپ میں بڑا گہرا خزانہ رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے خدمت، خادم، جسے ڈیکن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے گریک زبان میں جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پاسٹر کی خدمت کے بارے میں، مبشر کی خدمت بارے میں، یہ تقریباً ایک لفظ اپنے اندر بہت زیادہ خدمات کا اثر رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم اس سے پہلے کہ اپنے زندگی میں جانے کہ ہماری خدمت کون سی ہے، کس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں، کون سا خدا نے وہ خدمت کا کام ہم میں سے ہر ایک کو دیا ہے، ضرورت ہے وہ بنیادی 6 شخصی ذمہ داریاں ہر ایک ایماندار کو اپنی زندگی میں پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے رومیو اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے ہم 8 آیت تک پڑھیں گے۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت سے 8 آیت تک یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ معقول سے مراد کے روحانی عبادت، یعنی کہ یہی تمہاری روحانی خدمت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا مناسب سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے، کیونکہ جس طرح ہمارے بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، یہاں پر وہ بھید ظاہر کرتا ہے، دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو، یعنی کہ یہ وہ خدمت جو کہ ابھی کام نہیں کرتی، نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اگر ناصر ہو تو نصیحت میں، خرائط بانٹنے والا ثقافت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ اس حوالہ میں پالوس رسول ایمانداروں کو جو کہ مسیح کے بدن کے طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، جیسے ہمارے بدن میں اگر ہاتھ یا پاؤں مختلف راستہ اختیار کرے، یا دل یا دماغ مختلف سوچ رکھے، تو پھر ہمارا بدن صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا اور ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں دوائی کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری ساری بگڑی ہوئی حالت کو ٹھیک کرے۔ لیکن پالوس رسول یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں، تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، یہاں پر وہ ایمانداروں کی ان ذمہ داریوں کو، ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت یونانی میں سے کہا گیا کہ تمہاری روحانی خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خدمت کو سر انجام دیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس یونانی کے لفظ کے گہرے بھید کو، ڈائیکونیا، DIAKONIA، جو اپنے آپ میں بڑا گہرا سچ رہتا ہے رکھتا ہے۔ آج ہم ساتویں آیت پر غور کریں گے، جیسا کہ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، یہاں پر کون سی خدمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ڈیکن کی خدمت ہے جو کہ اسے دی گئی ہے چھوٹے پادری کی حیثیت سے کلیسیا میں کی جائے، یہاں پر ہدیہ شکر گزاری دینے والے کا رول ہے جو کہ ایمانداروں کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ پرستش کرنے والے کی خدمت ہے کہ خداوند کی پرستش سچے دل سے کرے، جیسے کہ ایماندار ایک دوسرے سے محبت کرے اور ایک دوسرے کے تابع رہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے، یہ ایمانداروں کی زندگی میں ایک بہت اچھی خدمت ہے۔ اس لفظ میں ڈائیکونیا میں بہت گہرا سچ پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس پر سیکھیں گے جسے کہتے ہیں سلولی سلولی، یعنی کہ آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں ٹیچ کیا کہ مرکز کی انجیل یسوع مسیح کو خدا کا خادم کے طور پر بیان کرتی ہے، یسوع مسیح کو خادم کے طور پر بیان کرتی ہے، اور ہم نے اس کے لیے حوالہ دیکھا تھا مرکز 10 باب اس کی 45ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे। वो खुदामदों का खुदा इसलिए जमीन पर आया है कि उस खिदमत को अंजाम दे जो उसके बाप ने उसके लिए ठहराई है। वो क्या है और वो खिदमत क्या है? खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के फिदिया में दे। यसु मसीह की ये खिदमत थी और यसु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया खुदा होते हुए। फिलिपियों 2:5 उसकी 5 आयत से 11 आयत तक कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानों के ताबे हो गया। अपने आप को अपनी कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि खाकसार की तरह खुदा की मर्जी को पूरा किया। इससे पहले कि हम ईमानदार, बेशक आप में से कुछ ईमानदार या बहुत से ईमानदार जानते हैं कि उनकी बुलाहट, उनकी खिदमत क्या है। वो पास्टर की खिदमत हो सकती है, वो एक डीकन के हैसियत से यानी के एल्डर की हैसियत से चर्च में खिदमत हो सकती है, मुबशर की खिदमत हो सकती है और हदिया शुक्रगुजारी देने की जो कि शख्सी तौर पर भी बड़ा लोग बोझ रखते हैं, लेकिन ये आम खिदमत है यानी के हर ईमानदार की है जिसमें बहुत सी खिदमत पाई जाती हैं। लेकिन आज आपसे वो 6 बुनियादी शख्सी जिम्मेदारियां शेयर करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं जो हर एक ईमानदार के लिए जरूरी हैं और ये बड़ी ही मददगार हैं अपनी अपनी खिदमत को पहचानने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं अपनी खिदमत को कैसे पहचानूं, मैं यूनानी इब्रानी को नहीं जानता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं इस काबल नहीं कि जाकर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कोई काम करूं। सिर्फ आज सुने और इन 6 बुनियादी बातों को अपनी जिंदगी में अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। तो ये 6 बुनियादी बातें कलाम खुदा में से आपकी तरक्की का बायस बनेगी और रूहुल कुद्दस की ममूरी में आपको अपनी खिदमत के बारे में जानने के लिए तैयार करेगी। रोमियो 12:7 उसकी 7 आयत, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। जैसे 6 खिदमत कही, पहली, हर एक ईमानदार को जरूरी है कि कलामे खुदा को वो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए। सादा सी और बहुत ही गहरी और पावरफुल, जिसे कहते हैं कि ताकत वर बात है। हर एक ईमानदार को जरूरी है कि कलामे खुदा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए। अगर कोई पढ़ सकता है तो उसे पढ़े, अगर नहीं पढ़ सकता तो उसे सुने। जैसे रोमियो 10:5 उसकी 17 आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। लेकिन मत्ती 4:5 उसकी 4 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि हर एक आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदावन खुदा के मुंह से निकलती है यानी के खुदा का कलाम। और इसी तरह हम अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं, अय्यूब 23:5 उसकी 12 आयत, वो कहता है कि मैं तेरे मुंह के तेरे लबों की बातों से ना हटा और मैंने तेरी बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। ये है ईमानदारों की सबसे पहली जिम्मेदारी के कलामे खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी जिंदगी में भूखों की तरह उसकी भूख और प्यास रखें। क्योंकि लूका 1:5 उसकी 57 और 53 आयत के दरमियान ये हवाला हमें मिलता है कि उसने भूखों को सैर कर दिया और जो शेर थे उन्हें उसने खाली हाथ लुटा दिया। हमें भूखों की मानद अपने खुदावन खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। ये है पहली जिम्मेदारी जो हर एक ईमानदार को करना जरूर है, ना कि ये एतवार को बाइबल उठाई, उस पे से धूल साफ की और फिर उसे रख दिया और पूरा हफ्ता शर्माते रहे और बाइबल की तरफ थोड़ी सी भी तवज्जो ना दी। जब एतवार आया तो बहुत ही रास्तबाजाना अंदाज में बगल में बाइबल ली और चर्च की तरफ रवाना हुए। नहीं, बाइबल मुकद्दस में ऐसा हुक्म नहीं मिलता। लिखा है कि अपनी सलीब यानी कि ईमानदार को हर रोज यीशु मसीह की तलाश, यीशु मसीह की पैरवी करने की जरूरत है। और ये किस तरह होगा? मसीह की अकल के बायस। पहला करंथियों 2 बाप उसकी 14वीं और 16वीं आयत के मुताबिक नफसी आदमी खुदा के रूह की बातों को नहीं परख सकता, लेकिन हम में मसीह की अकल है यानी के लिखा हुआ कलाम जो लागोस कलाम उसने बोला है, उसकी सांस, उसका इल्हाम। ये किस लिए है? पहला तमोथियस गालबन उसका 3 बाप उसकी 16वीं और 17वीं आयत के मुताबिक, और वहां पर क्या लिखा है? हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम यानी के खुदा की जो सांस है वो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए है। ये पहली बुनियादी बात है जो ईमानदारों को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। और पालूस रसूल तमोथियस को, पहला तमोथियस उसका 4:13-16 आयत में कहता है कि जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम की तरफ मुतवज्जा रहे। हमें कलामे खुदा को अपनी जिंदगी में ये हिस्सा, बुनियादी हिस्सा बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, हर एक ईमानदार को चाहिए कि वो अपने गुनाह का इकरार करे जब भी वो गुनाह, कमी, कमजोरी, गलती में गिरे, क्योंकि इंसाल उसका 28:13 उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे साथ निकालें इंसाल 28:13 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। और पहला यूहन्ना 1:5 उसकी 6 आयत से 10वीं आयत तक, अगर कोई कहे कि मुझ में गुनाह नहीं और मैं गुनाह नहीं करता तो वो अपने आप को फरेब देता है और खुदा को झूठा ठहराता है। सोचने की जरूरत है कि कितनी बार हम दिन में बोलने में, देखने में, सोचने में, चलने फिरने में और अपने इमाल से गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा ने इसका हल ईमानदारों के लिए बख्शा है ताकि रूह से मामूर हो। और उसका हल ये है कि अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ करने में सच्चा और कादर है। ये हर रोज ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर जब भी वो गुनाह में गिरें तब ही हम रूहुल कुद्दस की मामूरी में जिंदगी बसर कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम में गुनाह है यानी के तारीकी है तो फिर खुदा के साथ हमारी रफाकत नहीं। जब हम अपनी कमी, कमजोरी, गुनाह, गलती का इकरार करते हैं तो हम खुदा रूहुल कुद्दस को इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में आए और हमें अपनी मामूरी से मामूर करे। और ये जब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी कमी, कमजोरी का इकरार ना करें, तब ये वादा, ये हुक्म हमारी जिंदगी में पूरा होगा। 5:18 उसकी 18 आयत के मुताबिक, शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। जब हम अपनी कमी, कमजोरी का इकरार करेंगे तो तब ही रूह से मामूर होंगे। जब हम रूह से मामूर होंगे तब खुदा के साथ हमारी रफाकत होगी, क्योंकि दाऊद और बाकी तमाम हम बहुत से ईमानदारों को देख सकते हैं कि जहां पर उनकी जिंदगी में गुनाह है वो अपने गुनाह के लिए उसे पुकारते हुए नजर आते हैं। जबूर 51 जो बड़ी ही मिसाल है। और तीसरी बात, पुरअसर दुआ। पुरअसर दुआ हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कि रूह कुद्दस की मामूरी में, रूह में। इफ़सियों 5 उसकी 18 आयत में क्या लिखा है मेरे साथ निकालें। तीसरी बात, पुरअसर दुआ। हमारी दुआ पुरअसर कब हो सकती है? जब हम रूह में मामूर होकर दुआ करेंगे, जब हम रूह में दुआ करेंगे। अगर आप रूहुल कुद्दस की मामूरी में नहीं, उसकी रफाकत में नहीं, तो आपकी दुआ आपकी छत को भी पार नहीं करेगी। आपकी दुआ आप तक ही महदूद रहेगी। इसलिए पालूस रसूल इफ़सियों 6 उसकी 18 आयत में कहता है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो ताकि जागते रहो कि सब मकसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो। तब हमारी दुआओं का जवाब मिलेगा। और जब हम रूह में होंगे, फिर अपने लिए नहीं, मुझे फ्रीजर चाहिए और मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब आप रूह में होंगे तो रूह बदन के लिए ख्वाहिशात या रूह अपनी ख्वाहिश को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, ना कि आपके जिस्म की ख्वाहिशात। तब आपकी दुआ मौसर दुआ होगी। और ये दुआ सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि दुआ करने की जरूरत है अपने मुल्क की फौजों के लिए जो सरहदों पर है, अपने मुल्क के इत्मीनान के लिए, तमाम मसीही ईमानदारों के लिए कि जो अपनी जिंदगी में उस फजल को जो उन पर हुआ है और इस वक्त जो कुदरत उनको बख्शी गई है उससे किस तरह लापरवाही में, उसकी दी हुई नेमतों से किस तरह लापरवाही में जिंदगी गुजार रहे हैं। तब आपकी दुआ आपकी छत ही नहीं बल्कि आसमानों को पार करती हुई उस रब्बुल फवाज तक पहुंचेगी, और कोई भी उस दुआ को रोक नहीं पाएगा। जब आप रूह में दुआ करेंगे और रूह में की हुई दुआ वो जवाब देगी। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े ही वाजिया है। बहुत से लोग हवाला जात को बहुत अच्छे तरीके से कोट करते हैं दुआ में कि रासबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा हिस्सा भूल जाते हैं। यकूब 5 उसकी 18 आयत में लिखा है कि एक दूसरे के वास्ते दुआ करो, एक दूसरे के वास्ते दुआ करो। बहुत से लोग सिर्फ आखिरला हिस्सा ऐड करते हैं कि रासबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। जरूरत है एक दूसरे के लिए दुआ करने की। बहुत दफा लोग दुआ नहीं बल्कि खुदा को क्या करते हैं, लामे देते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लेन, जिसे कहते हैं कि किसी के खिलाफ बात, ऐब जोई और बहुत सी बातें। सोचने की जरूरत है कि अय्यूब जब उस दुख और तकलीफ में से गुजर रहा था तो उसके दोस्त बजाय के उसके साथ मिलकर खुदा की हजूरी में ठहरें, उसे हौसला फजाई दें, लेकिन वो उस पर क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, मलामत। अय्यूब तूने कोई गुनाह किया है, अय्यूब को ऐब जोई उसकी करते हुए, अय्यूब को नीचा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें दुआ एक दूसरे के लिए करने की जरूरत है, एक दूसरे की हौसला फजाई करने के लिए, एक दूसरे की बढ़ोती के लिए, ना के अय्यूब के दोस्तों की तरह या फिर हैकल में उस महसूल लेने वाले और उस फरीसी की तरह कि फरीसी कहता कि मैं ये करता हूं, फलां करता हूं, उसे मैं, लेकिन वो फरीसी जो शख्स वहां पर दुआ करता हुआ कहता है, वो अपना सर भी नहीं उठाता आसमान की तरफ, कहता है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हमें उस فریسی کی طرح نہیں بلنے کی ضرورت بلکہ اس معصول لینے والے کی طرح خدا باپ، جو لوگ نافرمانی میں کم علمی کی وجہ سے تجھے وقت نہیں دیتے ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ تیرے رحم اور فضل کو جانیں۔ یہ تیسری بات ایمانداروں کی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ وہ دعا صرف اپنی روحانی ترقی کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے کرے، ہر ایک کے لیے دعا کرے تاکہ خدا ان کے دلوں کی آنکھوں کو، یعنی کہ ان کی سمجھ کی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ جانے کہ ان کی حیثیت خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے، بجائے کہ نا امیدی میں، جھوٹ میں، لاپرواہی میں، جادوگری میں، بت پرستی میں، وہ بت خواہ کسی کا بھی ہو، وہ بت خواہ کسی کا بھی ہو، خدا وند خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کہ خدا وند مسیحیوں کو اپنی حالت پہچاننے کی حکمت اور دنائی دے۔ اور چوتھی بات، گواہی دینا۔ ہر ایک ایماندار کو شخصی طور پر یہ ذمہ داری حاصل ہے کہ وہ گواہی دے، وہ ہر وقت تیار رہے اپنی اس امید کے لیے جو امید اسے بخشی گئی ہے اور جس امید کے باعث وہ اس زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ پہلا پترس اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت، ایمانداروں سے بات کرتے ہوئے پترس کہتا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے ان اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، بڑی ہی حلیمیت کے ساتھ، ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنے دل میں یہ عزم رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ درد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ اس دم توڑتی ہوئی دنیا کو، اس بے امید دنیا میں، اس دنیا میں جو کہ عارضی ہے، ہمارا مقصد اس زمین پر کیا ہے، کہ اپنی امید کی وجہ دوسروں کو بیان کرنے والے بنے کہ ہم اس زمین پر در حقیقت کیوں ہیں۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑی ہی اہمیت اور بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنی شخصی طور پر زندگی میں جانیں کہ ہم اس زمین پر کیوں ہیں۔ ہم اس زمین پر درخت کاٹنے کے لیے یا عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ جیسے آپ کو پہلے سکھایا کہ اس کے خیالات بھلائی کے خیالات ہیں، اس کا ہر ایک منصوبہ جو اس نے تیار کیا ہے وہ راست ہے۔ آپ میں سے وہ ہر ایک کے لیے منصوبہ رکھتا ہے کہ کیوں اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور جو سب سے بڑا منصوبہ اور ذمہ داری ہے ایمانداروں کی زندگی میں، ہر وقت تیار رہنے کی، تاکہ جو کوئی آپ کی امید کے بارے میں پوچھے کہ آپ کی امید کیا ہے، تو آپ ان کو جواب دینے والے بنے کہ میری زندگی کی بنیاد ہے یہ ہے زمین پر کہ یسوع مسیح نے میرے خون کے، میرے گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا، اور آسمان سے خدا اپنے آپ کو خالی کرتا ہوا انسان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہ میرا منجی ہے، اور وہ ایک دن آئے گا اور میں آسمان پر ابدی زندگی گزاروں گا، اور اس نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ ہر ایک ایماندار کی زندگی میں شخصی گواہی ہے اور ان کی امید کا کیا ہے، وجہ ہے۔ 5ویں بات، شکر گزاری دینا۔ ہدیہ، روپیہ پیسہ خداوند کے جلال کے لیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہر ایک ایماندار اس ذمہ داری کو جانے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ بہت دفعہ ایماندار باتیں اور بڑبڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، واہ اب آ گیا ہدیہ کا ٹائم، وہ यानी वो रुपया वो पैसे जो किसी काम के या फटे हुए, इससे मुराद नहीं बल्कि वो हिस्सा निकाला जिसमें दिल में खुशी नहीं लेकिन खुदा, ऐसा हदिया शुक्रगुजारी नहीं बल्कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। दूसरा क्रंथियों उसका नामा बाप उसकी 7वीं आयत के मुताबिक क्या लिखा हुआ है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, इससे पहले के आप खुदावन को दें उसके बदन की तरक्की के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए खुदावन से दुआ करें। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप थोड़ा हदिया देते हैं बहुता, लेकिन खुदावंद चाहता है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर देना दरे करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदावंद ऐसे हदियों शुक्रगुजारियों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है और देने वालों को बरकत देता है। और छठी बात, हर एक ईमानदार को रूह की यगानगत में उसके बंद में बंधे रहने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में आया है, जहां दो या तीन जमा होंगे मैं उनके दरमियान होगा। इसका सादा लफ्जों में मतलब है कि जहां दो या तीन है वहां पर जरूर फसाद होगा, वहां पर जरूर एक दूसरे की खिलाफ वर्जी होगी, एक दूसरे के खिलाफ ऐब जोई होगी, झूठ होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह सच्चाई मिलती है। इफिसियों 4 बाप उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक में पौलुस रसूल कहता है कि पस मैं जो खुदावन में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हलम के साथ, तहम्बल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो बहुत दफा उनमें फसाद, उनमें बहुत सी बातें पाई जाती हैं। लेकिन पौलुस रसूल यहां पर हमें सिखाता है एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है। सोचें जरा, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की जिंदगी क्यों एक ही दिन में ना बदल दी। वो शागिर्द जो 12 शागिर्द हमें नजर आते हैं कलामे खुदा में, लेकिन वहां पर बहुत से लोग हैं, लेकिन 12 शागिर्द जिन्होंने 3 साल का अरसा यीशु मसीह के साथ गुजारा और वो दिन रात उसके साथ रहे, क्यों यीशु मसीह ने उनके लिए कोई चुनाव ना किया, क्यों यीशु मसीह ने उनके लिए उनकी मर्जी के लिए आप उनको कहा कि ये मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हें तरबियत दी और उन्हें दावत दी कि ये है सच, उन्होंने अपनी मर्जी से चुना। आज बहुत दफा हम सच को जानते हुए उसे रद्द करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा, ये हमें खुद करने की जरूरत है। और ये किस तरह होगा, कमाल फरोतनी और हलम यानी कि हलीमी तहम्बल के साथ, हलीमियत के साथ, तहम्बल के साथ और एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत सुला के बंद में बंधी रहे, सुला के बंद में बंधी रहे। हमें एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। अगर आप एक दूसरे को कोई आपकी ये अबजोई करे, आपको बुरा कहे, ये कहे, फलां कहे, माफ करने की जरूरत है ताकि यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हम देखते हैं कि किस तरह शागिर्दों ने बहुत से मौजदात किए। पौलुस रसूल जिसने यीशु मसीह से डायरेक्ट यानी के रूबरू होकर वो मुकाशफा हासिल किया और उसने तल्लीम पाई और उसने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो दिन ब दिन सीखता रहा कि किस तरह खुदा की मर्जी को पूरा करे। ये 6 बुनियादी बातें जो जिम्मेदारियां हैं हर एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत ही बुनियादी हिस्सा रखती हैं। और ये 6 बातें जिसमें کلام خدا کے ساتھ ہماری رفاقت، جس میں ہر روز اپنی ٹوٹی ہوئی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے اپنے گناہ کا اقرار اور روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا، تیسری بات پر اثر دعا، یعنی کہ روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کے لیے، چوتھی گواہی دینے کی ضرورت ہے، پانچویں ہدیہ شکر گزاری کا عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، اور چھٹی روح کے بند میں بندے رہیں، یعنی کہ رفاقت اور شراکت ایک دوسرے سے بندی رہے، اور یہ چھ بنیادی باتیں ہمیں ہماری زندگی کی خدمت کو جاننے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی، جیسا رومیو 12 باپ اس کی 7-8 نے دیکھا، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ یہ لفظ ڈائیکونیا اپنے آپ میں بہت گہرا سچ رکھتا ہے، لیکن آج صرف یہ 6 باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ 6 کی 6 باتیں یاد رکھیں گی، یہ میرا کام نہیں، آپ کا کام نہیں، بلکہ روح القدس ہے، جب وقت آئے گا تو آپ کو یاد دلائے گا۔ روح القدس جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کو یاد دلائے گا یہ 6 گہرے سچ جو ایمانداروں کی ذمہ داری ہیں۔ آئے ہم خداوند خدا کے حضور جھکیں، اور آج کے ان 6 بنیادی ذمہ داریوں اور ان سچائیوں کو جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان گہری سچائیوں کے لیے، اپنے بیٹے کی صورت پر ہر روز ہمیں ڈلنا سکھا، اور روح القدس کی معموری میں ہر روز زندگی بسر کریں۔ جب بھی ہمارا تعلق تجھ سے ٹوٹا ہو خدا باپ، ہم سمجھ جاتے ہیں اور یہ ہمیں جاننے کی حکمت اور دنائی دے کہ تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تجھ سے جدا رہ کر ہم پھل نہیں لا سکتے۔ سو خداوند آج تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔